इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम NPS अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मानसिक शांति के साथ साथ NPS जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉरपोरेट कर्मचारी NPS से जुड़ सकता है किसी भी POP जैसे बैंकों NBFC के जरिए या NPSTrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना NPS खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए NPS जरूरी है।
Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Gang and with me is my co-anchor Ishal Sharma.
Namaskar, Market Mantra mein aap sabhi ka swagat. Karyakram mein hum desh, duniya aur ki aarthik, vyaparik aur share bazaar se judi taza khabrein aap tak laate hain aur un par charcha bhi karte hain. चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार उज्जवल रे। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डैंग।
थैंक यू विशाल। ये हेडलाइंस फ्रेंड्स, पीएम टू पार्टिसिपेट इन इंडिया टेकेड, चिप्स फॉर विकसित भारत, ले द फाउंडेशन स्टोन फाउंडेशन फॉर 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट वर्थ 1.25 लाख करोड़। आफ्टर अ फ्लैट टू पॉजिटिव स्टार्ट द मार्केट एक्सटेंडेड द गेन्स, सेंसेक्स गेन्स 165 पॉइंट्स, Nifty closes at 22,335. And in the global oil market, intraday trade, Brent crude was trading at $82.88 per barrel.
Pradhan Mantri Narendra Modi kal India's package chip for Vikasit Bharat karyakram mein hissa lenge. 1.25 lakh crore rupaye se adhik ki 3 semiconductor pariyojanaon ki aadharshila rakhenge. प्रमुख घरेलू शेयर बाजार लाख के साथ हुए बंद, सेंसेक्स 165 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,335 पर पहुंचा और वैश्विक तेल बाजार में ब्रेंट कच्चा तेल $82.70 प्रति बैरल के आसपास कर रहा कारोबार।
Well, Prime Minister Narendra Modi will participate in India's decade Chips for Vikasit Bharat and lay the foundation stone of 3 semiconductor projects worth about 1.25 lakh crore rupees tomorrow through video conferencing. The foundation stone will be laid for the semiconductor fabrication facility at the Dholera Special Investment Region DSIR in Gujarat, an outsourced semiconductor assembly and test OSAT facility in Assam and Gujarat. The projects are in line with the vision of the Prime Minister to position India as a global hub for semiconductor design, manufacturing and technology development, fostering the creation of employment opportunities for nation's youth. The units are slated to provide employment to thousands of youth in the semiconductor industry as well as catalyze employment generation in related sectors such as electronics and telecom.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर वे देशभर के युवाओं को संबोधित भी करेंगे। गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र DSIR में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा और असम तथा गुजरात में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट OSAT केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। इन परियोजनाओं से भारत प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित होगा। ये इकाइयां सेमीकंडक्टर उद्योग में हजारों युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और दूर संचार जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे.
वी शैल बी रिमेम्बर ड्यूरिंग कोविड पीरियड व्हेन देयर वाज एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स बिकॉज दे वर नॉट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. Any just after COVID, anyone who wanted a car had to wait for a very long time because there were no semiconductors available. And any vehicle takes hundreds of these chips. So it's just right. It's such a great vision of the Prime Minister that to because it has a long incubation period. आज आप set करेंगे, आज आप foundations को ले करेंगे, तो इसका हमें कुछ समय के बाद सेमीकंडक्टर हमारे हाथ में आएगा.
जी लालिमा, ऑटो सेक्टर का आपने जिक्र किया कि कितनी जरूरत होती है सेमीकंडक्टर्स की, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम के क्षेत्र में भी सेमीकंडक्टर्स की बहुत ही अहम भूमिका है. और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में कुछ ही देशों का इसका जो निर्माण होता है सेमीकंडक्टर्स का, इसमें कुछ ही देशों की अभी तक इसमें एक तरीके से कह लीजिए कि मोनोपोली थी, लेकिन अब भारत भी सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रधानमंत्री आधारशिला रखने वाले हैं सेमी कंडक्टर्स के निर्माण से जुड़ी हुई. और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उज्जैन रे. उज्जैन, स्वागत है आपका कार्यक्रम में.
धन्यवाद.
इफ आई मे इंटरप्ट विशाल, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी कंडक्टर यूनिट्स इन इंडिया. पीएम विल ले द फाउंडेशन स्टोन उज्जैन टुमारो. We aim at not just being self-sufficient, we also aim at being an exporter, just as we have been doing in defense now recently. Right, Uday?
Absolutely, and the government has made it clear that they just don't want some manufacturing facilities to happen. They want to be one of the leaders in this area. But having said that, as an aspiration, that's fantastic. As a start point, it is very important because you want to catch up. We have seen how important semiconductors are, and the long car waiting list and the consumer durable issues.
Everything has a semiconductor.
Yeah, absolutely. Everything. And especially defense, you know. So we are getting to see that. So that will crunch. The you know, we'll have to leapfrog. But having said that, there are lots semiconductors have moved so far ahead that it will take a lot of doing. That's a hard work of decades, not some years. So apart from all the infrastructure that we are talking about, whether it's power, water, and what have you, need very good manpower. So even as we do that, all these things will have to happen simultaneously. So Lalim, it's almost like you're riding a bicycle, you're whistling also, and you're looking around also, and maybe thinking about something that's coming ahead also. It's like multitasking of the highest order. Mm-hmm. So it's a great start. I mean, you want to move and you want to start with a bang. You must need ambitious targets. But anybody who you would talk to, you wouldn't know that there's a long road ahead.
जी, दक्षिण कोरिया, चीन ऐसे कुछ देशों का सेमीकंडक्टर निर्माण में काफी एक अच्छा दखल है और काफी एक अधिकार भी है उनका. इसके लिए जो एक जरूरी टेक्नोलॉजी उद्यम जो जरूरी है, क्या हमें अभी इतना हमारे पास इतना टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है कि हम सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं?
देखिए, ये एक ऐसी गुत्थी है और ये ऐसा कोड है जो कि सब क्रैक करना चाहते हैं. तो आप देखिए, ताइवान में TSMC, मैं डिजाइनिंग के बारे में बात करूं, मैं डिजाइनिंग और उसके साथ जुड़े हुए मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर हम बातचीत करें, ताइवान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि TSMC जैसे हुनर चिप मैन्युफैक्चरिंग उस छोटे उसके वो तो बाकी किसी के पास है नहीं. और चीन भी इस रेस में है और वो भी आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका भी आगे बढ़ रहे हैं, जैसे साउथ कोरिया का भी आपने नाम लिया. तो ये कुछ कंपनियां हैं, ये कुछ देश हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, और जिन जो कंपनियां काम कर रही हैं इनके ऊपर, वो एक नेशनल एसेट है. तो ये उस दर्जे तक पहुंच गया है जैसे स्टीम इंजन का एक रोल था, जैसे तेल के कुएं का एक रोल रहा 100 साल तक. ये उसी तरीके से पूरा जो चेन से सीधे रेयर अर्थ से लेके चिप डिजाइनिंग से लेके चिप मैन्युफैक्चरिंग तक, ये जो पूरा चेन है वो आगे चल के हमारे फ्यूचर के लिए क्रिटिकल बन जाएगा. जिसके पास इसका वर्चस्व रहेगा
उसका दबदबा दुनिया में रहेगा.
आप मेरी मुंह से बात छीन.
एंड देन व्हेन वी टॉक ऑफ सेमीकंडक्टर सेटिंग अप अ यूनिट लाइक दैट, not only would it give employment opportunities to our own people, it will also give a lot of fillip to the MSMEs which will be involved in the sector.
Absolutely. You know, what also happens, Lalima, look at the fantastic progress that we are making in space
yes.
startups.
Yes.
It is beyond phenomenal. I mean, the phenomenal is you leave behind that. So this is what exactly we are going to look at when these things happen. All these associated things are going to happen side by side.
Mm-hmm. Right now, let's go in for a short commercial break, friends, and we'll be back very soon. Stay tuned.
अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी NPS पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉरपोरेट कर्मचारी NPS से जुड़ सकता है किसी भी POP जैसे बैंकों NBFC के जरिए या NPSTrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना NPS खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए NPS जरूरी है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर कार्यक्रम वार्षिक मंच में और अब बात कर लेते हैं शेयर बाजार की। उतार चढ़ाव भरे एक और सत्र में आज प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में मिला जुला कारोबार देखा गया। सकारात्मक शुरुआत के बाद 7 दिन के कारोबार के दौरान बाजार में तेजी का रुख रहा, लेकिन बाद में IT शेयरों को छोड़कर बाजार में बिकवाली के बीच मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 165 अंक की बढ़त से 0.2% ऊपर 73,667 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 3 अंक की मामूली वृद्धि से 22,333 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में BSE मिड कैप इंडेक्स 1.3% की गिरावट और स्मॉल कैप इंडेक्स 2.1% के नुकसान के साथ बंद हुए।
In yet another volatile session today, the Indian benchmark indices ended on a mixed note. After a flat to positive start, the markets extended the gains as the day progressed but witnessed profit booking amid selling across the sectors barring information technology. The Sensex ended 165 points or 0.2% up at 73,667. Nifty also raised 3 points or 0.1% to close at 22,335. In the broader market at the BSE, the mid-cap index was down by 1.3% and the small-cap index lost 2.1%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 8 companies appreciated while those of 22 companies declined. HDFC Bank surged 2.3%, TCS gained 1.6% and Maruti rose 0.9%. On the other side, SBI declined 1.8%, JSWC fell 1.4% and ITC slipped 1.2%. In sectoral indices at the BSE, only 2 sectors gained while 18 declined. Tech sector gained 0.6% and IT sector rose 0.4%. On the other side, realty sector fell 3.5%, industrial, commodities and services sectors slipped 1.7%. The overall market breadth was negative as shares of 669 companies appreciated while those of 3,224 declined. A total of 74 companies remain unchanged. So, then what have you got to say about the Sensex at 73,667? It's been a volatile over the last few days.
Yeah, one thing, I haven't seen the disaggregated data, but what obviously is happening, Lalima, is that the large and prominent companies, to put it in simple words or in a short, mm-hmm. is large cap. So those large cap stocks, I suspect, have done well. And the others, which is namely the mid-cap and small-cap, perhaps may not have done as well today. And primarily, there have been this whole conversation going around about fraud and excesses happening out there. These things typically happen when things happen too fast, too quickly, and at a space where you feel that it might just be the underbelly, because small cap is not exactly the superstar category. They're on their way up, so the business models etc. are not so established, and they don't have such a long good track record. You know, they might have a track record, but they may not have an exemplary track record like the large cap ones. So those are the things that that might have played up, and that probably is showing in the BRET data that you're talking about. So then what happens is it's much better than in the US, where it's just about 7, 8, 10 of those massive mega caps who are driving the market. It's not like that. In our case today, perhaps that broad zone the markets might have gone to. And then maybe they were waiting for the inflation data, both places, in India and abroad, in the US. And once that gets sorted out, maybe they'll take the cues and respond accordingly.
जी, आपने inflation data की बात करी, उस दिन महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत की खबर है फरवरी में. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई फरवरी में सालाना आधार पर 1.35% कम होकर 5.09% पर आ गई है. आज जनकों ने ये आंकड़े जारी किए हैं, क्या कहेंगे?
देखिए, ये ब्रॉड कंफर्ट जोन के अंदर तो आ जाता है, आरबीआई के जो 4 से 6 वाले जो जोन है उसके अंदर आ जाता है. पर मुझे अचरज नहीं होगा कि इसमें कमेंट्री में या कॉन्वर्सेशंस में या गाइडेंस जो भी कहें उसमें सेंट्रल बैंक या हमारे रिजर्व बैंक अभी रेट कटौती के बारे में तो बातचीत होगी नहीं. और ये काफी कुछ डिपेंड करेगा कि अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक या फेडरल रिजर्व उनकी नीतियां क्या रहती हैं, वो क्या इशारे करते हैं, क्या बोलते हैं. और ये भी उनके आंकड़ों के ऊपर डिपेंडेंट. तो सारे सेंट्रल बैंक का एक टर्म रहा है कि विल बी गाइडेड बाय डेटा, डेटा गाइडेंस से होगा. तो अगर डेटा गाइडेंस है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी तो अलग, आकलन और उसकी समीक्षा अलग से होती है, तो उस हिसाब से होगा. पर ये वहां से क्यूज लिए जाएंगे और ये ब्रॉड कंफर्ट जोन के अंदर डेफिनेटली आ जाता है. फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए हम और बेहतर हो गए थोड़ा सा, तो वो वहां पे डाउन पॉइंट होंगे.
आपने छोटे और मजदूरी कंपनियों के शेयरों में फ्रॉथ की बात कही और सेबी चीफ का भी एक कुछ इस तरीके का बयान आया है. ऐसे में निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह है?
देखिए, आप चाहे मार्केट तेजी में हो या मंदी में हो, ये करना कहना बड़ा आसान है, माइक के सामने बैठ के स्टूडियो में करना मुश्किल है, मैं मानता हूँ. पर कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमारा जो अप्रोच है वो हमेशा कांस्टेंट रहे. तो जो जैसे गीता में कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ होना मुश्किल है, करने की कोशिश की जाए, चाहे वो आप मेडिटेट करके करें जैसे करें. तो आपको कुछ बेसिक्स देखने हैं जो आप हमेशा करते हैं एक नॉर्मल मार्केट में, नॉर्मल मूविंग मार्केट में जो करेंगे उसका अलग कुछ नहीं करना है. इन्वेस्टमेंट आपके आंकड़े और तथ्यों के ऊपर होता है, ना कि दूसरे क्या करें. बाजार में जब ऊपर जा रहा है तो जाहिर है दूसरे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, उससे आपका कुछ लेना देना नहीं. आपका लेना देना आपकी जो जरूरतें हैं, टारगेट्स हैं, आप जो करना चाहते हैं अपने पैसों के साथ, जितनी बढ़ोतरी करना चाहते हैं और क्या आप हैंडल कर सकते हैं, कितना रिस्क, उस हिसाब से करना. कुछ नया उसको आप ये ना समझें कि अगर पहले आप पैदल चल रहे थे तो मार्केट जब ऊपर जा रहा था आपको सर्कस आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं, आप वही करते रहे. और कई बार क्या होता है, निवेशक को ये भूल जाते हैं कि कई बार छोटी और बोरिंग चीजें करके बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं.
That was a bit diplomatic. You wouldn't comment on small cap versus small and medium cap versus large cap. I guess you said a lot in your lines to be cautious all the time. लुक एट
और रुपए पर भी के प्रदर्शन पर भी नजर डाल लेते हैं. अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 82.77 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में गिरावट से 102.87 पर कारोबार कर रहा था.
लुक एट द यूएस मार्केट, वेल द S&P 500 एंड नैस्डैक ended down slightly on Monday, with investors preparing for this week's consumer and producer price data, which they hope will provide a better idea of whether the Federal Reserve can begin cutting interest rates in the coming months. The S&P 500 lost 0.1% to 5,117, while the Nasdaq Composite slipped 0.4% to 16,019, while the Dow Jones Industrial Average went flat at 38,769. Well, more on this a little later. For the moment, let's go in for a short commercial break. Friends, shall be back very soon. Stay tuned.
अच्छे रिटर्न के साथ साथ NPS आपका आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करता है. 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉरपोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है किसी भी पीओपी जैसे बैंकों एनबीएफसी के जरिए या ntstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है।
ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत आप सभी का। और अब हम बात कर लेते हैं वैश्विक शेयर बाजारों की। देखते जाने से पहले लालिमा ने अमरीकी शेयर बाजारों के बारे में बताया था और अब एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजारों की बात कर लेते हैं। एशिया के सभी प्रमुख शेयर बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा। जापान का निकेई 0.06% नुकसान में रहा और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.4% की गिरावट के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.08% की बढ़त दर्ज हुई। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% के लाभ में रहा और हांगकांग के हैंगसेंग में 2.9% का उछाल आया। यूरोपीय बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी का रुख था। वैश्विक निवेशकों को अमेरिका से मुद्रा स्फीति के ताजा आंकड़ों का इंतजार है। समाचार तैयार किए जाने तक लंदन का फुटसी 0.8% ऊपर चल रहा था। फ्रांस का कैच 0.1% और जर्मनी का डेक्स 0.3% लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे।
ऑलराइट, उदयन, इफ यू वांट टू मेक अ काइंड ऑफ अ कंपैरिजन, जापान एंड जर्मनी प्रोबेबली went towards recession or technically are in the recession, but we're not talking much about it. And the US markets are on a strong footing. Of course, inflation has gone up in the US markets. How would you comment on that? Where do you see the two, these three major economies placed in the global market?
So in the US, Lalima, the census, I mean, actually what I get from gleaning from what's coming out in the media reports is that inflation has softened up overall, but the pace at which you, markets would like the inflation to soften up very quickly. They want quick signals that Fed is going to start rate cuts so that then they can go back to their party ways again and get excited. So that's what they want. Markets want to see. They want to hear. But that is not what is being told to them. So you will find this disconnect between what's happening and what people want to hear are two different things. So there, although things are softening up, you know, unemployment rate has marginally inched up, but the economy is holding up pretty well, and that's primarily because of the institutions, the intrinsic strengths of an economy like US, because they've got institutions. They, even if they slip, they can bounce back very quickly, because when you have that kind of depth and that kind of reservoir of capital and labor and everything, technology, so then things start becoming very very easy for you comparatively. That is not the advantage which Europe had, has and had. They were surviving on Russian gas and oil, and that has got expensive and they have got messed up. Fortunately, from where we are in India, when we looked there, we said, okay, we are in a good place. But they need to do well. China needs to do well for us to do well, because we also sell to these people. And we also get stuff from these people. So the more we are integrated with the world, we can't say that, oh, you know, we are okay and, well, too bad, guys, see you next year. That's not going to happen. We will get affected, our exports and our imports and lots of other things will get affected. They have got affected. So, to realize our full potential, we need all these guys back on the feet, do well. Because when they do well, we'll also do well.
Right, that's as simple as that. All right, let's move on. Have a look at the oil prices. Oil prices rose in Tuesday's trade as geopolitical tensions in the Middle East continue to spur concern. In intraday trade, Brent crude was trading at $82.88 per barrel. West Texas intermediate crude price was at $78.51 per barrel when reports last came in. So how do you view the oil prices, and how do you see the effect of the global economy and the Indian economy?
Lalima, they're trying, I mean, OPEC guys are trying their level best to make supply cuts so that it remains on the 85 kind of range. And of course, new supplies have come in from the US. So there is this constant ding-dong, oscillating battle between supply and demand, and where the net result eventually is whoever has got a better hand. So as long as there aren't fresh supply disruptions, we can expect more of the same to continue in the future.
जी और अब मूल्यवान धातुओं की बात कर लेते हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाला सोना 74 रुपए की मंदी से 65,961 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. मई अनुबंध वाली चांदी भी 31 रुपए टूटकर 74,483 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी. वैश्विक बाजारों में सोना गिरावट के साथ $2,181.61 प्रति औंस पर चल रहा था. चांदी भी मंदी से $24.66 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी. उद्यन सोने और चांदी की कीमतों में देखें तो आज थोड़ा सा हमें कुछ गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी एक मंदी का असर दिख रहा है. लेकिन पिछले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताहों में देखें तो सोने की कीमतों में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है. लगभग 66,000 के आसपास भी पहुंच गया है सोना. अब ये इस तेजी के पीछे आप क्या वजह मान रहे हैं? क्या क्या केंद्रीय बैंक दुनिया भर के सोने की खरीद बढ़ा दी है या इसके अलावा भी कोई और कारण है?
वो तो हो ही रहे, उसके रिपोर्ट्स तो आ ही रहे. पर दूसरी बात ये भी है कि एक रिस्क ऑन बिहेवियर जिसे कहते हैं, जब मूड में होते हैं कि हम, जैसे हम मूड में हो जाते हैं हम चलिए अब बाहर खाना खाएंगे, खर्चा ज्यादा करेंगे, इससे इस टाइप का रिस्क ऑन बिहेवियर है. जब आप दूसरे प्रेशियस मेटल्स की तरफ भी जाते हैं, दूसरी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं. आप साइडवेज देखिए, जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैं दे आर हिटिंग ऑल टाइम हाईज, लाइफ टाइम हाईज में चले गए. तो ये एक रिस्क ऑन बिहेवियर है. वहां पे भी देखा जा रहा है कि ये जो बैड न्यूज है थोड़ा सा पीछे है. तो कई बार पैसे जो है वो ढूंढता है कहां पे अंडर वैल्यूड है और वहां पे जाकर वो रिटर्न खोजता है. तो चाहे वो तेल में हो, चाहे वो, ये जरूरी नहीं है कि जो यूजर है वही पैसे लगा रहे हैं. यहाँ पे जो स्पेकुलेट कर रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है या जो उसमें फ्यूचर्स कर रहा है, ऑप्शंस काट रहा है, राइट कर रहा है, वो भी इसमें इस गेम में होते हैं. तो वो भी प्राइसेस या मार्केट के कोर्सेज को डिटरमिन करते हैं.
उदिन, इंडिया रिसेंटली साइंड अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद द यूरोपियन ब्लॉक कंट्रीज. Among them, one of the major ones was Switzerland. We probably import 80% of gold from Switzerland, but they have left this category out and they have not touched the tariffs on gold. How is it going to affect us? Or
I'm not very clear about that, but gold
was largest reserve as far as Indian women are concerned.
No, that's okay. Even China has been also demanding, and they're Lalima, the number of there have been reports about the number of millionaires in India. Yes. It's probably going to hit about $1 million. So that itself is a huge demand. So at the higher end, our the kind of luxury goods and precious metals and alternate investments,
yeah,
and other kinds of banking will have its own market. So we haven't opened that, I think, if I'm not wrong.
You're right.
Financial services has been, ambit has been kept out, and
yeah,
Switzerland is known for wealth management.
Yes, yes.
So those things are going to be at play. But yeah, we are becoming a formidable player in this.
Right.
ये उद्यन, आप स्टूडियो में आए, कार्यक्रम में शामिल हुए और अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम पहलुओं पर आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद.
Alright friends, before we close, here's a reminder of the headlines. PM to participate in India's decade, Chips for Vikasit Bharat, lay the foundation of 3 semiconductor projects worth 1.25 lakh crore. After a flat to positive start, the market extended the gains. Sensex gains 165 points, Nifty closes at 22,335. And in the global oil market, intraday trade, Brent crude was trading at $82.88 per barrel. Well friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. Goodbye.
एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है. 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉरपोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं. सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम NPS अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है।
Thank you.